हुआ कि आप बाजार में सोना आ रहा है नागरिकों को दे दिया है तो पूरे देश के शेतकरी कर्जमुक्त हो सकते हैं और आज नीचे बात प्रधानमंत्री के पीएम में हम लोग गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमने लघु की और नाम पर तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पे जाहिरात लेकर बोलो कि फायदा बाजार में ना कर सकते, आपकी एक मजबूरी हमें समझते आपके आपके मजबूतियों का करार नहीं किया है, अंतर्राष्ट्रीय करार है, इसकी शर्त मानना आपकी मजबूरी है, फायदा बाजार खोलना आपकी मजबूरी है, ये समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक जाहिरात दे दो या आधा घंटे का एक घंटे का कार्यक्रम दे दो और लोगों को बताओ तो सही कि वायदा बाजार होगा क्या, अगले चलो खुद लोग घोषणा करने समझदार हैं, इसमें फंसे ही नहीं देंगे, फंसे थोड़े दिन में धंधा अपने आप धंधा हो जाएगा, ठेका हो जाएगा, ये बात नहीं होगी तो आपकी करार की शक्ति पूरी हो जाएगी और हम लोग से भी बढ़ जाएंगे, तो उनको समझ नहीं भारत के लोगों को सही माहिती देना ये सरकार को समझ में नहीं आता, मोटी माहिती देकर लोग टीवी पर घंटों घंटों समय खराब करते हैं, वो कर सकते पेप्सी पीओ, कोका कोला पीओ, कॉलगेट पाउडर लेकर वो कटी माहिती जो किसी काम की नहीं है वो बोल जाती है और ये जो माहिती जिसकी आवश्यकता है लोगों को वो कर देते हैं। फिर जानकर प्रधानमंत्री ने मुझे ये कहा अच्छा हम तो ये नहीं कर सकते, मैंने पूछा क्या परेशानी क्या है, तो वो कहते हैं कि ये परदेशी कंपनियां आई हैं, ये हम लोग चिंता नहीं रहेंगे, अगर हमने ये माहिती के तरफ किया लोगों में जागरूकता आ गई, लोग फायदा बताओ से दूर हो गए, जिंदा उनका नहीं चला तो वो हमको नहीं रहे थे, सरकार नहीं चल रही थी, ये जो सरकार है वो सही ले गए, हम तो सबको विड्रॉ हो जाएगा, हमें सब तकलीफ आ जाएगी, हम तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक टीवी चैनल आप चालू करो उसमें भी माहिती कर, मैंने कहा जब मुझे यही करने का है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है, तो हम करेंगे, तो हमारी सरकार इतनी असहाय है, इतनी हेल्पलेस है इस पूरे सिस्टम में, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और वो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें ये दुष्परिणाम होता है, अब इस दुष्परिणाम में भाग कौन खाता है, जो सोने चांदी का व्यापार करने वाला बहुत व्यापारी है जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो साधारण सा व्यापारी है छोटे छोटे बिजनेस करने वाला है दिन का मान को लाख डेढ़ लाख पांच लाख दस लाख बीस लाख का शेयर करने वाला बिक्री करने वाला और ये शहर को छोड़ दूर गांवों में चार बैठा हुआ तो ये आदमी सोने चांदी की दुकान के लिए दसों सालों से काम करता है जिनका मुश्किल से पांच सात दस हजार रुपए का कुछ बेचता है उसको सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है। मेरा जिस गांव में जन्म हुआ वो उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले मेरे गांव में आज स्थिति यह है दस व्यापारी के सोने चांदी का व्यापार करने वाले मैंने बचपन से उनको देखा है लेकिन इस फायदा बाजार में दसों ने अपनी दुकानें बंद कर वो पहले सोने चांदी के दाने बनाकर मेरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी करते थे और आसपास के गांवों की जरूरत पूरी करते थे अभी तो सोने का भाव एकदम से 8000 रुपए तक गया है उसी में उनका अब वो क्या कर रहे हैं वो बेचारे सब दुकानें बंद करके शेर मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं पूरे जो बनाते हैं सवेरे भाव कुछ ग्यारह को कुछ शाम को कुछ और जो रियल ट्रेडर है जो वास्तविक व्यापारी है जो सच में सोने चांदी का कुछ न कुछ बनाकर बिक्री करते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा हार है जिनको सिर्फ चीटिंग करनी है धोखाधड़ी करनी है लूट मार करनी है उनको इसमें फायदा होता है तो हमारी सरकार ने ये खतरनाक खेल शुरू कर दिया और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के लिए उत्तर हो रहा है अभी सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ उत्तर नहीं दिया जाए हमने आज न्यूनतम ऊपर कहने आया हूं कि सरकार अपने हर गलत काम को सही साबित करने के लिए कोई न कोई उत्तर ढूंढती है तो इसके लिए उन्होंने उत्तर ढूंढा वो क्या है वो कहते हैं कि गुरु में और एक काम करो 150-200 टन का धंधा है सोने चांदी का सोने का जैसे कम से कम चांदी उसमें छोड़ो वहां पर थोड़ा बहुत पसंद होता है फायदा बाजार का भारत में तो बहुत कम होता है 1-2 टन का सवाल है उसका मानी भारत में सोने की रोज की खपत 1 सवा टन के आसपास की है ज्यादा से ज्यादा चिंता यह है कि भारत में 107 कोटी की लोकसंख्या में लगभग 1 कोटी सराफा व्यापारी है संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, और लगभग 1,50,00,000 आई है जो दाखिल कर रहे हैं। लगभग 1 कोटी व्यापारी है, 1,50,00,000 कारीगर है, इसका माने 2,50,00,000 लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर 2,50,00,000 लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भारत में 50,00,000 परिवारों की जिंदगी इससे चल रही है। अगर हम सरकार के आंकड़े को भी मान लें कि एक परिवार में 5 नागरिक होते हैं तो लगभग 50,00,000 परिवारों की जिंदगी इससे चलती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से या तो उसकी कारीगरी से। तो ये 2,50,00,000 लोग, इनमें से जो बड़े लोग हैं वो 1% भी नहीं है। बड़े लोग से मतलब जिनका बिजनेस 10-20-50 करोड़ रुपए से लेकर 1,000-2,000 करोड़ रुपए है, वो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। और इसमें 70-75% जो व्यापारी हैं और कारीगर हैं वो बहुत गरीबी के स्तर से काम करने वाले कारीगर व्यापारी हैं जो दिन में मुश्किल से 300-400 रुपए कमाते हैं इस धंधे में होने के बाद। बाकी लगभग 20% ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से हैं, जो यहां बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं, माइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं, लेकिन उन 75% का क्या कि वो मेरा व्याख्यान भी नहीं सुन सकते क्योंकि इकट्ठा होने के लिए कोई हॉल चाहिए, वो किराया देने का पैसा नहीं उसके पास। आप उसकी कैसे भेज दो, हम आपकी कैसे प्लेट पर लगाकर देंगे या उसकी कॉपी करके दूसरों को। तो मैंने सारे 300 पद लिखने वाले लोगों को दो कैसे बना के भेजे स्पेशल रूप से, और मैंने कहा कि काम सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा को सुनाओ ताकि लोगों में जागरूकता की आए कि हो गया। लेकिन मुझे बहुत खुश होता है सर, मुझे घर में मीटिंग चाहिए है, आपकी मीटिंग करने के लिए खर्चा तो कुछ लगता है, अगर कुर्सियां भी लानी है, दरी भी बिछानी है, माइक भी लगाना है, बल्ब भी लेना है, इतना भी नहीं है हमारे पास, इसलिए कैसे। तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे हैं और 75% है, जो होगी 50,00,000 लोगों में 75% इस गरीबी की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको 2 समय की रोटी चल पाती, क्योंकि कारीगरी में बहुत पैसा नहीं है, जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं। आप देखते घंटों घंटों बचते हैं, सब एक छोटा सा दागिना तैयार होता है, आगे उसी बेचारे की कैसे तकलीफ में आती है, सब जाकर एक छोटा दागिना तैयार होता है, लेकिन कारीगरी ज्यादा मिलती नहीं है क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है इस देश में, एक दूसरे के आपस के कॉम्पिटिशन कि वो ज्यादा मिल नहीं सकता है। और ग्राहक भी इस देश का ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता। इस देश का ग्राहक ऐसा मूर्खाई में फंसा हुआ है, वो पेप्सी कोला कोका कोला पी के पैसा बर्बाद कर सकता है, लेकिन आगे बोलते को कारीगर काम करना उसको 10 रुपए ज्यादा देने की उसकी बोलने पहुंच सकता है। रिक्शे वाले के साथ चिक करेगा, 50 रुपए में लगा लिया, 2 रुपये लगा लिया वापस दो, और 5 स्टार होटल में जाकर 20 रुपए की चाय पिएगा, 50 रुपए की कॉफी पिएगा, 5 रूम में खाने दूध देगा, लेकिन वो गरीब आदमी को देखो को तैयार नहीं। यही हाल सुनी चाहिए दादी के लिए काम में लगे हुए करोड़ों नागरिक होता है, जो कारीगर के रूप में काम करते हैं उनकी हैसियत खर्च होती है, उन पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है इस फायदा बाजार का। मैंने आपसे कहा सदैव भाव को सुनेगा, शाम को कुछ बंद होगा, अगले दिन कुछ सुनेगा, फिर शाम को बंद होगा, उनकी हैसियत होती है। ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम फायदा बाजार कर दिया है, इससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार कर दिया है। सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो, ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड पर लिखा रहता है ना ISO 9001 या ISO 9002 या ISO 9003 प्रमाणित कंपनी। ये ISO 9001 क्या होता है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके बनता है, वो अमरीकियों ने बनाई हुई है, यूरोपीय नागरिक और अमरीकियों ने बनाई हुई संस्था है। ये संस्था एक प्रमाण पत्र देती है, उसका पैसा लगता है, और पैसा जितना लेती है प्रमाण पत्र की कीमत उससे बहुत ही कम होती है। पैसा भरपूर लेते हैं, क्या प्रमाण पत्र देते हैं? प्रमाण पत्र ये देता है कि ये कंपनी अगर ISO 9000 पर है तो हमने इसको प्रमाण पत्र दे दिया। मतलब क्या है कि इनका जो लेखा जोखा है, कंपनी का जो लेखा जोखा है वो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन दूसरा काम क्या है, लेजर वर्क जिसको है, लेजर वर्क मैंने फाइल बनाने की, उस पर खाता लिखने का, आज इतना माल बेचा कर इतना बेचा कर लाया वो लाया। तो जो फाइलिंग वर्क है जिसके कागज पर कुछ लिख के रखना होगा उसके लिए ISO 9000 मिलता है। बात समझना, फाइलिंग वर्क के लिए मिलता है। उस कंपनी की बनाई हुई वस्तु की क्वालिटी उससे बहुत अच्छी हो गई है इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। गाड़ियों समझ पा सकता आपको एक बार समझ में आ गया। मैं कोई मदद करता हूं उसमें खूब घोटाला करता हूं। मान लीजिए एक कल्पना को मैं साबुन बनाता हूं, मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसके पास ISO 9000 है, साबुन बनाने वाली कंपनी है। वो साबुन में रेत मिला, रेती समझते मिट्टी, मिट्टी मिला और मिट्टी को साबुन के भाव में बेची। उनके साबुन को मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 70% मिट्टी है, 30% ही साबुन। मैंने उनसे कहा भले आदमी आपके पास ISO 9000 है और 70% मिट्टी आप बेच रहे हो, मिट्टी आती है 1-2 रुपए किलो की और बेच रहे हो 150 रुपए किलो, क्योंकि उनका साबुन मिलता है 15 रुपए का 100 रुपए किलो हुआ। मिट्टी खरीदा 1 रुपए किलो में, बेच रहे हो 150 रुपए किलो, मिट्टी दूर में जा रही है और क्वालिटी भी नहीं आ रही है। तो उसने कहा कि गाड़ी पर यह सब धंधा हमारा इसलिए अच्छा चलता है कि हमारा ISO 9000 चल रही है। तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि ISO 9000 कंपनी है इसलिए माल की क्वालिटी जबरदस्त हो, लेकिन क्वालिटी का ISO 9000 से कुछ लेना देना नहीं होगा। और इसमें खेल कहना चलता है, खेल ये है कि ISO 9000 देने वाली जो संस्था मैंने बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एजेंट आते हैं जिस कंपनी को मार्क देते हैं वहां आते हैं, उनके जैसा उसमें रहते हैं, खाना खाते हैं, होटल में मजा करते हैं, दारू पीते हैं और रक्षा प्रति सब करते हैं, वो कंपनी के खर्चे पर करते हैं। हम तो उनको एक सर्टिफिकेट देकर चले जाते हैं कि हमने आप सबको प्रमाणित किया ISO 9000। अब इसमें होता क्या कि कंपनी को सब कुछ अपने से करना पड़ता है, आपकी फाइल मेंटेन करिए, लेजर मेंटेन करिए, फोटो मेंटेन, सब कुछ आप मेंटेन करिए, आपका चार्टेड अकाउंटेंट रखिए, मैनेजर रखिए, उसको पगार दीजिए, खर्चा करिए, कंपनी को एक सही करके सर्टिफिकेट देगी जिसको मत लगा के चार्टों को विटामिन सी भी नहीं मिलता, वो एक सर्टिफिकेट है। सब कुछ करना आपको है, खर्चे सारे आपके होंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ये ISO 9000 जो लेने वाले हैं उनको मैं कहता हूं तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है, इतने मूर्ख हो गए हो, सब कुछ तुम कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट उस कंपनी को क्यों दे रहे हो? तो तुम्हारा दावा करो ना कि हमारा सब लेजर अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, मार्केटिंग क्वालिटी अच्छी है और अकाउंटिंग भी हमारा परफेक्ट है, कोई भी आगे देखे तो ग्राहक को तुम्हें सर्टिफिकेट देगा वो कंपनी से बड़ा होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो कर रहे कि आप ISO 9000 लेके आपका जो मेडिकल वर्क है उसको फिट करके रखो और वहीं से फिटिंग करना शुरू कर दो, क्वालिटी गिराते जाओ, ISO 9000 का मेडिकल वर्क शुरू कर दो, ठीक कर दो, गोर कर दो, इधर क्वालिटी फिटी कर। ठीक यही धंधा अब सोने चांदी के उसमें आ रहा है और मार्ग के नाम से। ये उदाहरण मैंने आपको उसकी जगह समझ में आता है। अब आ रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जैसे ISO 9000 है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का एक हिस्सा है। और ये यूरोप से शुरू हुआ, अमेरिका में फैला और वहां से यहां आ रहा। अच्छा, इस बॉल मार्ग के धंधे में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपके बहुमान रजिस्ट्रेशन दे, उस रजिस्ट्रेशन की फीस 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये भर दो, आपको बहुमान का रजिस्ट्रेशन माने सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें सही होगा, बस आप लगा के रखो। अब दागिने पर अलग से हॉलमार्क नहीं होते, मैंने रजिस्ट्रेशन अलग कराओ आपकी दुकान का, आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का, उसमें 20,000 भरो और फिर एक एक दागिने पर अलग से हॉलमार्क दो। ये हॉलमार्क देने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि इसकी गारंटी आप देते हो कि जिस तो उसने कहा इसके लिए थोड़ी और 100% खराब सोने का दागिना है, 100% खराब चांदी का दागिना है, या 100% खराब हीरा है, इसकी गारंटी हॉलमार्क नहीं देता। हॉलमार्क के लिए गारंटी देता जैसे 9000 1 9000 1 9000 3 वैसे ही एक छोटी सी सर्टिफिकेट है। और इसमें बेईमानी का धंधा ज्यादा होता है। मैंने आपसे कहा ना 9000 1 नेगेटिव के बाद 70% मिट्टी मिला के साबुन बना के बेचो तो ग्राहक को क्या रखा हो 9000 1 उसको माइक्रोविंग केस के अंदर क्या बेचती है 9000। तो यहां क्या होगा, यहां यही होगा कि हॉलमार्क इस दुकान को मिला है, फिर झाभर मिलावट पर हो और आप कहो कि ये 80% है और उसको 100% कहकर बेचो, 60% है उसको 80% कहकर बेचो, रूप लो अल्टीमेटली रूप उसने ग्राहक के होगा। यूरोप और अमेरिका में जो हॉलमार्क सिस्टम आया था उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की। वहां कहानी ये है कि जो भी नशा करने वाले लोग हैं ये आप बहुत बदली पास समझता मुझे ये समझने में 3 साल क्यों आया जरूरत क्या थी। यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है दोनों के बीच में कोई विश्वास का संबंध नहीं। खरीदने वाले का बेचने वाले पर कोई विश्वास नहीं है और बेचने वाले का खरीदने वाले से कोई सिंपैथी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वहां का जो समाज है यूरोप और अमेरिका का वो समाज है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत आधारित पूरा समाज है, व्यक्ति आधारित। वहां किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। शादी भी होती है ना पति पत्नी की तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जैसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वैसे पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 2 साल साथ में रहेंगे उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगा, 1 साल साथ में रहेंगे या 6 महीने साथ में रहेंगे या 2 महीने साथ में रहेंगे या 1 लाख साथ में रहेंगे उसका भी फर्क है, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो यूरोप और अमेरिका में जो कुछ भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, विश्वास वहां नहीं है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। और समाज वहां का ऐसा है कि बहुत ही लगभग किस्म का समाज है, किसी की भी पत्नी अपने पति के सामने किसी दूसरे के साथ चली जाएगी घटना में तो कोई रोकने वाला नहीं है और रोकने की कोशिश की तो तब से कहकर चला देते क्या हो तुम्हारे घर में बिल्कुल शून्य है। तो ये हॉलमार्क नाम का एक क्षेत्र देते हैं, इससे थोड़ा विश्वास हो जाए खरीदने वाले को और थोड़ा सद्भावना बने देते हो। तो यूरोप और अमेरिका के समाज की संरचना ऐसी है जहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सरकार बीच में आकर के हॉलमार्क का सिस्टम लाई है। भारत में बिल्कुल उल्टा है, भारत में ये इतना उल्टा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मेरी कहानी बताता हूं दूसरे भी को नहीं बताता। मेरे घर में जब से मुझे याद है बचपन से तब से हमारा सोने चांदी का दागिना खरीदने का दुकान फिक्स है, वो बदलती नहीं है। मैंने एक बार मेरी आई को पूछा ये दुकान में से कब से लाते हैं, तो वो आई कहती है उसकी आई के समय से, उसकी आई को पूछा तो वो उसकी आई। माने मेरे घर में सोने चांदी का दागिना जिस दुकान से आता है वो दुकान का हमारा संबंध 10 पीढ़ी पुराना है। उनकी 10 पीढ़ियां मुझे नहीं, हमारी 10 पीढ़ियां मुझे। और मेरी आई को मैं पूछता हूं यही दुकान में क्यों जाती है, इतनी दुकान है गांव में, वो कहती है भरोसा विश्वास। जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, दागिने का नहीं। दागिना तो मुश्किल से हमारे घर में साल में 2-4 हजार रुपये का आता है, कभी कभी 2 साल में आता है। तो 2-4 हजार रुपये साल का बिजनेस और उसमें भी बेचारे दुकान वाले को क्या मिलता होगा जब 2-4 हजार रुपये का, हमारे 3 साल के बाद घर में एक छोटी रंगी आई है 4 हजार रुपये की। मैंने उसको पूछा मुश्किल से 400 रुपये रुपये मिला होगा, तो वो दुकान वाला नहीं कहता राजू भाई हमारा आपका विश्वास का बात है। मुझे याद है कि मेरे घर में कोई आयोजन हुआ हो और जो दुकान में आप छोटे साथी के दाखिल देते तो हमारे घर में ना, मेरे भाई जी ने भी थोड़े दिन पहले शादी हुई तो हमारे घर में कोई काम करता हुआ है या भागवत हो गई तो बराबर आते हैं जैसे हमारे परिवार का घर में कोई सुख की स्थिति है, खुशी की स्थिति है तो वो पीड़ित और पीड़ित पीड़ित रहते हैं, वो आपको बदलते नहीं, आपको छोड़ के नहीं। कारण क्या है कि वो सोने चांदी का व्यापार नहीं है, वो विश्वास की परंपरा है, भरोसा। तो हमारे यहां की पूरा का पूरा बिजनेस विश्वास पर आधारित है, भरोसे पर आधारित है। इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार होते काम करते हैं और वो भी हमारे साथ अपने सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं। मैंने हिंदुस्तान में सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे घर में बैठता। इतना आसानी के साथ वो आपके साथ आकर बैठता है, बात करता है। शायद खरीदी तो दो चार मिनट में हो जाती होगी, लेकिन जो बातें होती है सुख दुख की, परिवार की, एक दूसरे को समझने की, वो तो बड़ी होती है। तो भारत में सोने चांदी के दागिने में किसी हैं, परंपरा और विश्वास चला रहा है। अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले धंधे में हॉलमार्क होते का प्रस्ताव कर रहे हैं, वो क्या होगा मेरे? अभी तक तो आप अपने विश्वास को उसको देते थे और वो आपके विश्वास से खरीदता। अब कोई दिन आपकी दुकान में तो आएगा और आप देखो हमने जो हॉलमार्क का दागिना देना शुरू किया है, तो हॉलमार्क का दागिना जैसे आप बोलते हैं उसकी कीमत बढ़ने वाली, क्योंकि आपने जो चीज भरी है 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया है और प्रति दागिने के अदस्य की मात्र दो थे हॉलमार्क के लिए किसी को आपका चुनाव जो रहता आपको ग्राहक से जोड़ने वाले, तब उसके मन में शंका पैदा होगी। अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे कि भाई पहले तो हम देते थे लेकिन हम जो हॉलमार्क लगा हुआ दे रहे हैं तो आपके मन में कल्पना क्या आएगी कि ये ज्यादा बिके तो आप कहोगे कि ज्यादा अच्छा है, तो वो सोचे का अच्छा है वो सब खराब था। बस वहीं से चिड़ा हो गया तो वो आपको ज्यादा अच्छा नहीं करेगा, दो चार महीने पर ही करेगा, उस इंक्वायरी में उसका विश्वास आपसे और जब विश्वास टूटेगा तो ग्राहक टूटेगा और ग्राहक टूटेगा तो धंधा आपको। जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनके मन में वायरस भेजेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले इतने दाखिल हमने खरीदे वो सब खड़े नहीं ले जा। अभी ये जो हॉलमार्क वाला दे रहे हैं अगर ये खड़ा है तो पहले वाला खड़ा नहीं था क्या? और आप जानते हैं शंका का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है। एक बार शंका घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। भारत के बड़े बड़े वैद्य कहते हैं कि शंका का समाधान तो चरक ऋषि के पास ही नहीं, हर बीमारी का समाधान था, लेकिन शंका एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता। और अंत में क्या टूटता है? विश्वास, फिर टूटता है धंधा, फिर टूटती है दुकान, फिर टूटता है वो परिवार। जब आपने उसको एक बार भी दे दिया ना कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दागिना है, ये ज्यादा खड़ा है, तो वो देखेगा कि आपसे बड़े इंसान कौन सी है जहां ये हॉलमार्क का दागिना मिलता है, वो वहां जाएगा और वो उसके साथ रिपीट करेगा हॉलमार्क के साथ, क्योंकि उसका उस ग्राहक से कोई संबंध नहीं, ना परिवार का ना व्यापार। और आप जानते हैं सोने चांदी के धंधे में चीजें कितनी आसान है, मैं तो इसमें ज्यादा नहीं समझता हूं। मेरे घर में एक सोने की चेन है, इसका एक हिस्सा बहुत खरे सोने का है और बाकी तकलीफ होता हो तो मेरे पास कोई रह जाता है इतना। और अगर मैं इसको कह दो मीटर से भी पहचानने की कोशिश करूं तो भी पहचान में आएगा, क्योंकि कह दो मीटर कुछ होते से एक हिस्से में ही काम कर पाता है, पूरे दायरे में काम नहीं कर सकता। तो उतना छोटा सा हिस्सा खड़ा है और बाकी खोला है तो मेरे पास कोई शक्त नहीं है। और ये चीजें फिर बड़ी समस्या करेगी, क्योंकि उनको धंधा नहीं करना हो तो चीटिंग ही करनी, धंधा करने में और चीटिंग करने में अंतर है। धंधा करने में क्या होता है, हम आमंत्रित करके हम संतोष के साथ जिंदा रहते हैं क्योंकि हमें धंधा 2% आमंत्रित है, 3%, 5%, 10%, तो भी हम उसमें संतोष करके चलाते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में यह है कि 1,000% आमदनी हो, 1,500% हो, 2,000% हो, बिना कितना बड़ा हो, तो ये सिर्फ चीनी से ही हो सकता है। धंधे से कभी आमदनी कभी अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बी डबास आ गए और उसके साथ और दस बारह कंपनियां इस साल आगे जा रही है। सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया, अब वो ये रिटेल बिजनेस में भी उतर रहे हैं और रिटेल बिजनेस में उतर के वो क्या करने वाले हैं, उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि या तो आप हमारे पास मिल जाओ नहीं तो हम आपको करवा सकते। तो जो बड़ी फर्म है हिंदुस्तान में है जिनका नाम पिछले दस सारे साल में बना है, या तो ये उनके परिचय ही बने थे उनके साथ कॉन्ट्रेक्टर करेंगे लेकिन उनके मार्केट से खराब होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने तो तय किया हुआ है कि ये किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार है। फिर आपके सामने समस्या आ रही है जिनका बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि बड़ी कंपनी आमतौर के साथ जुड़ेगी नहीं और आपको चिंता के लिए रहते हैं मार्केट में, उसके कॉम्पिटिशन में आप उतर नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं है। मान लो कोई विदेशी कंपनी ने कोल्हापुर में आके एक शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में पहले वस्त्र वाली लड़की बिठाना शुरू कर दी, ऊपर से काली नीचे से काली और बैठी है एक लड़की मुस्कुरा के सबको हाय हेलो कर रही है, तो बहुत सारे ग्राहक तो थोड़े से चरित्र में कमजोर है वो तो फिसल गए, वो क्या कहेंगे यार खरीद नहीं कर रहा है चलो आराम से तो कुछ देखेंगे चलो कहीं लाइन लगा के खड़े हैं उनको करें। ज्यादातर विदेशी कंपनियां यही करती हैं, उनमें जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलते हैं ना सोने में आठ विदेशी कंपनियों ने शॉपिंग मॉल जितनी है पिछले साल में मैं जब भी जाता हूं यही प्रश्न होता है और कॉलेज के लड़के लड़के हजारों की संख्या में वहीं घूमते रहते हैं क्लास में नहीं जाते क्योंकि वहां पर काउंटर से लड़के बैठे थे वो सब कपड़े पहनते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन है कि शरीर दिखे ऐसे ही कपड़े पहने। तो यहां पर उन्होंने दुकान खोला और ऐसे कम कपड़े वाली लड़कियां बिठाना शुरू किया और उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया तो तमाशा हो गया। तो उनके धंधे इसी तरह की स्थिति पर आधारित होते हैं, कोई खराब होने में इसलिए आएंगे या दस वाले भी हमको लेके जाएंगे इसका कुछ नहीं, वो तो इस तरह के धंधे कर रहे हैं और आप अपने साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको धंधा करते हैं आप और आपके परिवार की मदद से, वो तो धंधा करते हैं पैसे की मदद, आपके लिए ये धंधा आपकी जिंदगी का रास्ता है मैंने जिंदगी को चलाने का जरिया है, उनके लिए धंधा उनके पचासों धंधों में से एक है जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना उनके जीवन का धंधा नहीं है नजरिया नहीं है। तो फिर आप उसको कॉम्पिटिशन में भी गए और वो कॉम्पिटिशन में आप करें तो धीरे धीरे आउट हो जाए। मुझे तो ये है कि 250 करोड़ लोगों की जीविका चली गई है इस तरह से, तो इसको कौन सा दूसरा व्यापार हम दे सकते हैं या कहां इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि बेरोजगार तो बढ़ेगा। ये हॉल मार्ग में एक तो सबसे बड़ी तकनीक की आने वाली है कि आपका ग्राहक का विश्वास टूटेगा, दूसरी तकनीक की आने वाली है 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगता है पहली बार जब आप जाओ, 1 कोटी भारत में सराफा व्यापारी है सब अगर रजिस्ट्रेशन कराए तो 20,000 करोड़ रुपये को उन्होंने लूट लिया एक साथ। आगे भी योजना क्या है उनकी, अभी वो ये कह रहे हैं कि आप हॉल मार्ग हो आपका ऑप्शन है आपकी मर्जी है लोग नहीं हो लेकिन रोज रुपये यहां तक कोई ना कोई आपको एजेंट आएगा या सरकारी निकलेंगे ले लो भाई ले लो भाई ले लो, वैसे कहेंगे भी मर्जी तो बार बार को समझा रहा वो देना होगा लेकिन नहीं देंगे क्यों मदद नहीं कर लेते आप वो करेंगे आपको बोलेंगे तो ऑप्शन है लेकिन बार बार आपको दिमाग में बात नहीं करेंगे ले लो ले लो ले लो ले लो क्योंकि उनको अपना धंधा चलाएंगे अपने साथ में क्या कर रहा है अमेरिका की बैंकों में जो सौदा पड़ा हुआ है उनको देश के कारण लेकिन मैक्सिमम प्राइस को देश यूरोप की बैंकों में जो सौदा गिरती रखा पड़ा हुआ है वो उनको मार्केट में देश के तो भाव चढ़ाएंगे तो उसको वायदा बाजार के थ्रू भाव चढ़ाएंगे, दूसरा अमरीका ईरान पर हमला करके ये बाजार चढ़ाएगा पेट्रोल दाम चढ़ाएगा सोने का भी चढ़ाएगा, जब मैक्सिमम स्थिति में होगा बाजार 12-13,000 रुपये सोना तब भारत से वो सोना बेचेंगे और देश का मुनाफा कमाएंगे और मार्केट को दिया ये अमेरिका हर 30 साल में करता है। मैं अमेरिका में पिछले 200 साल का इतिहास रखा गया हर 30 साल में अमेरिका ये खेल खेलता 1970 में खेल खेला था इन्होंने आप याद करो पेट्रोल के भाव के नीचे से चढ़ाए थे दुनिया सारी काम कर रही है और उसी तरह सोने के भाव चढ़ाकर ग्राम से सोना बेचा और हजारों लाखों करोड़ों का 1970 के पहले 1940 में अमेरिका में 1910 में अमेरिका के लोग 1870 में अमेरिका के 1840 में ये 200 साल से अमेरिका हर 3 साल में ये करता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी 30 साल में नीचे आ जाए जिसको रिसेशन कहते हैं रिसेशन हो जाए तो रिसेशन की इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका अपने जिंदा रहने के लिए सारे अभी वही समय अमेरिका का रखा रहा है तो ईरान पर हमला भी इसके हिसाब से किया था ईरान पर भी तैयारी करेंगे इसमें हम सबकी हालत खराब होगी ये परेशानी के साथ है चिंता के साथ और हॉलमार्क का जो कहते हैं ऑप्शनल है 2-3 साल का तो कंपलसरी कर देंगे अभी तो हमने कुछ कहना शुरू कर दिया है 2-3 साल के बाद कंपलसरी कर देंगे एक साल पहले तक तो ये भी बोलते थे कि कंपलसरी कर देंगे मैं तभी भी बोलता था कि आप थोड़े दिन के बाद इसको कंपलसरी करोगे तभी जिंदा रहता होगा इनको आप चले जाओगे तो वो कंपलसरी करेंगे तब आपके सामने परेशानी दूसरी आएगी कंपलसरी कैसे होगा और बार किसके लिए कानून बनेगा कानून से आपको बांधा जाएगा और कंपलसरी हॉलमार्क हो जाएगा माने अगर कंपलसरी हुआ हॉलमार्क तब पुलिस आएगी आपकी दुकान पर और छापा मारेगी कि आपके पास हॉलमार्क है या नहीं दादी पर हॉलमार्क है और अगर नहीं मिला तो कहेगी चलो कानून भंग किया उल्लंघन किया जेल चलो तो वो जेल में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे लेकिन डराई क्या आपको चलो देगी अंत में क्या होगा वो करेंगे आपसे सौदा और आपको है थोड़ा मन में डर जेल जाने से तो उसी में होगा सौदा और पुलिस वाला इंस्पेक्टर आगे कहेगा लाओ 10,000 रुपये लाओ 20,000 रुपये लाओ 50,000 रुपये तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा जैसे गुप्त लोग करते वैसे पुलिस करते और ये पुलिस का इतना आगे तक जाएगा कि पहले तो वो आएंगे आपकी दुकान में फिर आएंगे तो कहीं फोन करेंगे पुलिस स्टेशन में बैठते हुए इंस्पेक्टर फोन करेगा आपका हम क्या स्वागत के लाभ की जरूरत नहीं हम भी पहुंचा देंगे आपको तो 10,000 का पैकेट 30,000 का पैकेट आप पहुंचा देंगे तो हफ्ता वसूली शुरू हॉलमार्क के नाम पर होगी हफ्ता वसूली क्योंकि मैंने हिसाब लगा लिया कि ये जिंदगी में अगर हॉलमार्क को संपत्ति करते तो भी संपत्ति नहीं दे पाएंगे कारण उसका मैं बताता हॉलमार्क देने वाले जो ऑफिस में इनके पास तो अपनी गोली है और 1 करोड़ व्यापारी अगर लाइन लगा के खड़े हो जाए तो 2 ऑफिस कितने व्यापारियों को दे पाएंगे मैंने कैलकुलेशन किया कि 1 ऑफिस समय 9-10 बजे से 4-5 बजे तक काम करे तो 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा तो 500 व्यापारियों को दे पाएगा और 2 ऑफिस है तो 1,000 व्यापारियों को दे पाएंगे इधर से कानून लागू होगा तो पुलिस का डंडा शुरू हो जाएगा अभी तो आप परेशान रहते हैं पुलिस वो ये होता है कि कोई कहीं से सोना चोरा आपको तो मालूम नहीं उसके बाद से लिखा हुआ भी नहीं है कि ये चोर है वो आपकी दुकान पर नहीं उसके जाता है और वो जाकर पुलिस ऑफिसर को खबर कर देता है उस दुकान को वो आ जाती है आपको पकड़ के नहीं और कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि चोर ने बिना आपको सोना बेचे ही कह दिया अगर पुलिस को कि मैंने इसको बेचा है तो आपके पास कोई सबूत नहीं है आप उसको निर्दोष साबित कर सकते ये पुलिस की व्यवस्था इतनी हराम होने की है कि चोर जो जिंदगी भर तो नहीं कर रहा है उसके बयान को सत्य मानती है और जो प्रतिष्ठित व्यापारी धंधा कर रहा है उसको हमेशा झूठ मानती है और ये व्यवस्था कैसे है हमारी पुलिस की व्यवस्था 1860 की बनी हुई है अंग्रेजों के जमाने में उसमें एक प्रोविजन कहा हुआ है रिवर्सल ऑफ बॉर्डर ऑफ ट्रूथ इसका मतलब क्या होगा मैं समझा रिवर्सल ऑफ बॉर्डर ऑफ ट्रूथ का मतलब है कि जो आरोप लगाने वाला है उसको खुद सिद्ध नहीं करना जिस पर आरोप लगाया जा रहा है सब कुछ उसे सिद्ध करना तो चोर है बेईमान है लुच्चा है लफंगा है लफड़ है चरित्रहीन है ये पुलिस वाले जानते हैं लेकिन वो एक झूठा आरोपी अगर आपको लगा दे तो आपकी तो सारी कमाई उससे खत्म कर एक तो बेइज्जती का एक आधार और दूसरी आप जिंदगी भर के सरकारों से सरकारों के भाई उसमें कोई सोना नहीं देता मेरे पास कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं देता लेकिन उसने झूठ को स्टेटमेंट कर दिया तो आपको पता है और ये रोज रोज होता है मैं भारत के जितने गांव में जाता हूं कभी भी कोई मेरे डॉक्टर में कितनी इतने तरह का व्यापार आते हैं मेरे डॉक्टर में हम तो इससे इतने परेशान हैं पुलिस के लिए कानून से इंडियन पुलिस एक्ट से या किसी की धाराओं से आईपीसी की धाराओं से कि हम तो जिंदगी इसी में हमारी तरह हो जाए। आप कह रहे हैं धंधा देने के लिए पुलिस के ये सब भेजने के लिए पास और सरकार को मैंने कई बार कहा है कि आप इस पुलिस एक्ट को बदल दो वरना आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे पुलिस एक्ट की सबसे बड़ी दुष्परिणाम की विशेषता है वो ये कि जो चोर है बेईमान है वो सच्चा है और जो ईमानदार है वो झूठा है। पुलिस आपको झूठा बनाती है और आपके खिलाफ केस बनाती है और वो चोर झूठा बोल रहा है आपको कहीं ना कहीं सजा के चला जाए तो अभी तो आप इससे परेशान हैं फिर हॉलमार खाएगा तो आप जरा सोचना तो परेशानी कितनी बुरी पड़ जाए। आपको इस समय एकजुट होने का है और ये आप जान लीजिए कि मेरा सराफा व्यापार से उनका कोई संबंध नहीं। मेरी चिंता सिर्फ यही है कि 2.5 करोड़ लोग जो इस धंधे में है वो बेरोजगार हुए तो देश का क्या मेरे घर में सोने जाने का कोई धंधा नहीं है ना मैं सुना देखता हूं ना मैं सुना सकता हूं ना इस धंधे से मुझे कुछ मिलने वाला है ना मैं आपको कुछ देने वाला हूं। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है 2.5 करोड़ लोगों की रोजगारी देने वाला जो व्यापार है अगर ये टूट गया तो 50 लाख परिवार टूटते हैं करोड़ों लोग बेकार होते हैं जिसके लिए हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही जितनी बेरोजगारी इस देश में है 20 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है अभी तो 2.5 करोड़ और जोड़ने से देश का काम था। इसी चिंता में मैंने आपके बीच में और आपके व्यापारियों के बीच में जाना शुरू किया है कि आप उसको बचाने के लिए कुछ करो अपना भी व्यापार बचाओ और अपने सहयोगियों को बचाओ। तो आप बोले कि हम करें क्या है आप 3 काम करो और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये 3 काम अगर आपने पूरी ईमानदारी के लिए तो ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी ना हॉलमार्क देना पड़ेगा आपको और ना वायदा बाजार करना पड़ेगा। ये दोनों घटक होते हैं और ये घटक कैसे हो जाएंगे सरकार जरूर कहते हैं कि हमने डब्ल्यूटीओ की शर्त है ना उसके आधार पर देखा लेकिन डब्ल्यूटीओ में ही लिखा हुआ है एनी मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ एनी काइंड ऑफ सेक्रेटरी माने कोई भी सरकार कभी भी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट से बाहर आ सकती है कोई भी सरकार कभी भी इसको रद्द नहीं कर सकती उसी में लिखा माने ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जो परमानेंट है। और मैं आपको नाम लेकर बताता हूं कि दुनिया में आज से 10 साल पहले 134 देशों ने यह सही किया था उनमें से आज 70 देश बाहर निकल गए उनको समझ में आ गया 10 साल में ये बहुत बड़ा और इससे उन देशों को इंडिया उसका नाम है सुबह सुबह बहुत छोटा सा देश है अमेरिका के बिल्कुल बाजू में है नीचे है अमेरिका में बहुत गलत किया है सुबह को तो इससे एग्रीमेंट से बाहर हो जाओ सुबह का राष्ट्रपति बोलता है मेरे देश के लोग बोलते हैं कि इस एग्रीमेंट में नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहेगा तुम तुम्हारे देश का देखो मेरे देश का तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हारा उस पर हमला करेंगे तो स्वीकार करके देखो फिर हम भी तुमको बता देंगे कि हम क्या छोटा सा देश है मुश्किल से 1 कोटी की लोकसंख्या है मुश्किल से 1 कोटी की लोकसंख्या है और इस दादागिरी से अमेरिका को जवाब मिला और एक ही उसने सच में दिखा दिया कि अमेरिका कागज का शुरू है दम नहीं है क्यूबा ने अपनी आर्मी को अमेरिकन बॉर्डर में ट्रांसफर कर दिया अमेरिका परेशान हो गया अमेरिका को लगा कि अगर ये क्यूबा खड़ा होता है तो उसके आदिवासी के देश भी खड़े होते क्योंकि वो सब अमेरिका से खड़े और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है वहां का राष्ट्रपति ना फिदेल कास्ट्रो वो इतना लोकप्रिय है कि 28 साल से बराबर जुड़ कर आता अकेला खड़ा होता कोई उसके रिस्पॉन्स में नहीं आता 28 साल से बराबर जुड़ कर आता है और अपने आपको सरे और धब्बू देता है कि तुम्हारी यही मदद करते थे तो हम धब्बू की और नहीं मानते तुम्हारी तुम्हारे देश की देखो हम हमारे देश निकल गया क्यों धब्बू से और उनके सारी के सारे शर्त हॉल मार के वायदा बता के शेयर बता के सब खड़ा करके और जो देश बहुत अच्छा है 10 साल से अगर नहीं कर रहा है बहुत आगे आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास क्या करना है आप सबसे पहले एक फैसला करो कि कोल्हापुर सराफा एसोसिएशन का कोई भी कारीगर या व्यापारी हॉल मार्क नहीं है क्योंकि देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूं, दुश्मन से लड़ना है तो उसका बहिष्कार सबसे पहले असहयोग सबसे पहले। दुश्मन को अपने घर में बुलाओगे कि आप उससे लड़ने जाओगे। हमारे हिंदुस्तान की कहानी ही ये दर्द है। हमारे राजाओं ने अगर अंग्रेजों को अतिथि बना के नहीं बुलाया होता तो ये देश 250 साल गुलाम नहीं होता। हमने ये गलती कर दी है, भूतकाल भविष्य में करने की जरूरत है। पर भावनाएं नहीं देना ये एक संकट है, तो फिर क्या करना पड़ता है उसको। जब आप भावनाएं नहीं होते हैं जो देने के लिए घूम रहे हैं इनकी हालत होती खराब, क्योंकि हमने सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा। ये जो है ना आपके पास आते हैं ये सब सब कॉन्ट्रैक्टर है, ये असली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के नीचे असली कॉन्ट्रैक्टर को यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं। या हमने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, मुंबई में किया होगा, दिल्ली में किया होगा, तो ये बोल रहे हैं इन्होंने वहां भी जमा करा है। क्योंकि जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट से किया है ना वो चालाक हो गए, वो कहते हैं मेरे कुछ पहले पैसा जमा कर दो, तुम बांट पाते हो और बार नहीं बांट पाते हो तो रखते हमको दे दो। तो इन्होंने वहां पैसा भर के सब कॉन्ट्रैक्टरशिप किए, इनको वो पैसा निकालने का है। इसलिए लोग आते आपके दिमाग में से बाई सोसाइटी में ले लो बाली दो बाली दो बाली, और आपने अगर लेना बंद कर दिया तो फिर सरकार के पास जाएंगे कहेंगे कंपल्सरी कर दो, तो सरकार भी कानून बनाएगी। कानून बनाएगी तब उसके बाद हम लोग भी इसमें आएंगे उतरे, क्योंकि कानून बनेगा तो संसद नहीं बनेगा। और संसद में हम ऐसा हल्ला कर रहे हैं ये कानून के विरोध है कि ये पास ही ना। फिर सरकार क्या करेगी, कानून पास नहीं हुआ अगर संसद में, क्योंकि मैंने अभी से भारत के बहुत सारे आधारों को इस बात से समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे कल्पना है कि 3 साल के बाद कानून आना है, तो 250 से ज्यादा बात आरोप करने के समझा दिया कि देखो इसका खतरा क्या है। और पूर्वी भारत के जो खासदार हैं बंगाल के, आसाम के, बिहार के, उड़ीसा के, उनको ये बात अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारीगर उसी इलाके से हैं। दागे का आप काम करने वाले जो कारीगर है ना सबसे ज्यादा बंगाल में, दूसरा नंबर उड़ीसा में, बिहार में, उनको समझा गया, उनको समझ में आया। और उन्होंने कहा इसका मतलब अगर कानून बनेगा तो हम इसके खिलाफ वोट करेंगे, तो कानून वहां से नहीं बनेगा, बना तो राष्ट्रपति के हिसाब से रोकेंगे, उनका सही होने देंगे और उनका सही होने के लिए पब्लिक इन्वेस्टिगेशन फाइल करेंगे। उस समय आप सबकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो पिटिशन मैंने मेरे नाम से नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत में सवाल पूछेगी आपको क्या लेना देना इस तरह से, आपकी कोई दुकान है क्या, कोई बल है क्या, कोई कंपनी बेचना, कोई दुकान का कोई सब। तो मैं चाहता हूं उस समय आपका सराफा एसोसिएशन के नाम से लेके पिटिशन हम बनाएंगे, ग्राम की नाम करेंगे, नाम आपका रहेगा, क्योंकि वो तकलीफ देता है, वो की कहता है कि आप खोज इसी तरह के केस के लिए चले जाते हैं, जब से केस चाहिए है सुप्रीम कोर्ट में सब जज चाहे थे पहचानते हुए, तो वो कहते हैं अभी लेके आए, अभी थोड़े दिन पहले हम दो हजार का एक केस लेके गए, दो हजार को हमने जीत किया, उसमें सभी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को हफ्ता बता रहता है सरकारियों की तरफ। आपको अपनी एकता बना के रखनी है और ध्यान इस बात का रखना है कि एक दिन आपका व्यापारिक विभीषण न बने, एक दिन, क्योंकि वो खतरनाक है। कितना भी आपको कोई आके लालच दे आप बोलो कि हमको लेना है, लेकिन तुम मत खराब कर लो, जाओ ना तुम तुम्हारे काम करो, 20,000 रुपए है नहीं हमारे पास रजिस्ट्रेशन का, और हमारे पास इतनी मदद मैंने करने का टाइम नहीं थी कि ताकि चलो तुम्हारे यहां जाकर बहुत बार हमारा धंधा तो हम विश्वास पर करते हैं, परंपरा से हमारा चला रहा है, ग्राहक पर हमें विश्वास है, ग्राहक को हम पर विश्वास है, आप इस पर क्यों मुझ पर कार्य कर रहे हैं। तो ये आप अपनी एकता कायम रखो, आपके बीच में से कोई भी ना ले बलवान, और इसका एक ऐलान करा दो, 16 फुट से सराफा व्यापारियों के बीच में ऐलान करा दो, जब तक आप सब मिलकर फैसला नहीं करते कोई भी एक व्यापारी और मार्ग नहीं होगा। और अगर दिया तो उसी दिन उसका बहिष्कार कर। हमारे देश की यह परंपरा है कि समाज को एक रखने के लिए पहले जो बड़े लोग होते हैं। मेरे साथ नहीं है क्योंकि उन्हें विदेशियों का साथ दिया है। जी भी बात उसकी बेटी की शादी लगाई जा रहा नहीं, उसके घर में कोई फंक्शन जा रहा नहीं, उसको अपने घर में बुलाने की छत मार के पार हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा हॉस्पिटल में दो महीने के बाद ये क्या होगा, फिर उसको रियलाइज होगा कि मैंने गलती किया है तो गलती ठीक करो बापू से बहुत फर्क। तो ऐसा थोड़ी एकता बना के रखनी पड़ेगी और आप जानते हैं जब भी हमला होता है तो एकता बहुत जरूरी है। यदि विदेशी आकर बोलते हैं तो पहले आपकी एकता को, यही बात मैंने जलगांव में थोड़े दिन पहले कही, जलगांव सराफा एसोसिएशन के संकल्प करें कि हम में से कोई बहुमान मिलेगा नहीं, जब 2008 में संबंध होगा उसके लिए हम मरेंगे और उसको रोकने के सुप्रीम कोर्ट का और उसको कंपल्सरी होने के लिए, क्योंकि इसमें संविधान हमारे साथ, संविधान हमारे जो हमारी घटना है कॉन्स्टिट्यूशन वो हमको ये अधिकार देता है कि हमारा ऑप्शन है हम जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र, कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि यही करो नहीं तो घटना दुरुस्त करनी हमारी सरकार को, और घटना दुरुस्ती की ताकत किसी सरकार की नहीं है क्योंकि दो तिहाई बहुमत लगता है वो किस होती है तो मेरे स्वास्थ्य को बतानी है, निरंतर होती है शांति को बताएंगे, शांति में अंदर होता है सरकार को बताना है, सभी सराफा एसोसिएशन को यह संदेश पहुंचाना है कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के भरोसे में बढ़ेंगे और बहुमत नहीं करेंगे, ये देखना। दूसरा काम क्या, रोज टीवी में हम जाहिरा बनाएगा आप देखेंगे रोज, और वो जाहिरा करेंगे एक जाहिरा आएगा और उसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी और ये हॉलमार्क हमें खर्च करेगी, उसमें यह बताया जाएगा कि जो हॉलमार्क नहीं है वो खराब आमीना नहीं है, ऐसा जाहिरा रोज उसको बताया, और ये भी बताया जाएगा कि जिसके पास पहले तो टीकर नहीं है वो टीकर है। आपको ये दो बातों को खुलासा करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक माहिती पत्रक बनाए सराफा एसोसिएशन की तरफ से, और उस माहिती पत्रक में ये देना कि ये वास्तव में बहुमान होता क्या है, उनको मालूम नहीं है, ग्राहक जो है ना वो जरिया प्रभावित होगा, वो रोज टीवी में देखेगा कि हॉलमार्क जिसको लगा है वो अच्छी है, जिसको हॉलमार्क है वो खराब है, रोज जाएगा जाएगा और रोज संडे को भी आता भी है ना टीवी पे, सरकार ने कोई धारावाहिक बनाया है कोई सीरियल बनाया है जिसमें एक गलती है वो रोज ये बताती है कि आपका जो अधिकार कंज्यूमर का वो कंज्यूमर अधिकार से ज्यादा व्यापारियों को हिट करने का धंधा है, चोर देखा को साबित करने का धंधा, तो टीवी जाहिरात होगा, सिनेमा में जाहिरात आएगा, अखबार में जाहिरात आएगा, वो जाहिरात पढ़ के ग्राहक आपके पास और वो पूछेगा कि चक्कर क्या है, तो आप तैयार रखो ये माहिती पत्र मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, जिस भाषा को ग्राहक पढ़ता है और उसको दे दो पत्र कि भाई इसको पढ़ो ये चक्कर क्या है, तो ये लेना विद्यार्थी हमारा जो यहाँ का स्थानीय पत्र है वो आपको दे देगा, लगे तो उसी पर भी प्रिंट आपको हमारा नाम नहीं आपका अपना नाम नहीं, हमारा उसमें कोई कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, तो आप उस पत्र को आपको देकर एक पत्रक बनाकर आपको हमारे पुणे में एक संयोजक है शंकर प्रदेश, उनके पास वो पत्रिका अभी भी 100-150 की संख्या में है, वो आप हमारा को अगर यहां नहीं मिले शंकर प्रदेश का फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से बनाकर उसको हमने तो वो बनाए हैं हिंदी में लेकिन आप मराठी गुजराती कन्नड़ तमिल तेलुगु दूसरी भाषा में करके ग्राहकों के लिए उसको रखें। एक दूसरा एक काम और करने का है, अभी आपने जो सभा किया था ना ये आपकी सराफा ग्राहकों, आप ऐसी एक सभा रखो ग्राहकों उनको मैं समझा रहा आपके हरेक के कुछ ना कुछ ग्राहक प्रशिक्षण है, आप सभी व्यापारियों के 100, 200, 500 ग्राहक संख्या फिक्स है, एक बार उसको जाहिर निमंत्रण दे दूंगा और मैं तो बोला हूं कि किसी मैदान में रहूंगी ये विषय मैं उनको समझाऊंगा और अगर वो समझ रहे हैं तो वो आपके साथ रहेंगे, फिर सरकार आपका कुछ नहीं मिला। ग्राहक और व्यापारी ये दोनों अगर एक हैं तो दुनिया की थोड़ी ताकत हमारा कुछ मिलेगा, सरकार भी उनके साथ जाए और हॉलमार्क वाले भी सरकार के साथ मिल जाए तो हमारा कुछ मिलेगा, जब ग्राहक कहेगा कि मुझे चाहिए हॉलमार्क तो सरकार को कौन नहीं कहेगा, और ग्राहक भी कह देगा क्योंकि इसमें ग्राहक का कोई हित नहीं है, कोई भला नहीं, उसको एक तो खर्चा ज्यादा लगेगा क्योंकि ओवरऑल का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो ग्राहक का ही ट्रांसफर होगा, उसको खर्चा ज्यादा लगेगा और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो टूटेगा, आपका उससे जो संबंध है वो टूटेगा और समाज से संबंध अगर टूट जाए तो समाज नहीं चल सकता, देश भी नहीं चल सकता। तो दूसरा काम आप ये करें तो अभी से संपर्क बनाकर आप बांटना शुरू करो, ग्राहक के दिमाग में थोड़ा ये प्रश्न आना शुरू हो, दो चार महीने जब आपको लगे कि काफी ग्राहकों को बात पहुंच रही है तभी आप उनकी एक सभा बता दो, 1500, 2000, 5000, 10000 जितने भी ग्राहक इकट्ठे होते हो उनको मैं सरल भाषा में समझाऊंगा और इस पर मैंने एक फिल्म बनाई है, सीडी फिल्म बनाई है, वो मैं उनको दिखाऊ और पूरा डेटे यूरोप और अमेरिका में जो आया उसको लाया गया, हमारे देश में क्या आवश्यकता है या नहीं है, वहां की परिस्थिति क्या है, यहां की परिस्थिति क्या है, वो पूरी बात जब उसको समझ में आ जाएगी वो खुद ही कहेगा कि हमको हॉलमार्क नहीं चाहिए। जब उसने कहना शुरू किया तो इनको हम बाहर लेके हॉलमार्क देते हो उनके सामने अभी तुम बोलो, ये खरीदने वाला है लेकिन हम मुझे नहीं चाहिए तुम बड़ा बोलो तो सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है जिससे हम संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं सरकार में ताकत की बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर सरकार है कि जरा भी पर धमकी आने पर हम सामने से सरेंडर करें और ये अच्छा होता है हमारे पहले सरकारें इतनी कमजोर नहीं होंगी, अभी बहुत कम होगी क्योंकि हर समय गिरने का डर, अभी जो सरकार चल रही है उसमें 23 पक्ष हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक पक्ष भी निकल आएगा तो जब जिसके मन में आता है सरकार को घुमा कर और जिस सरकार में कई राजनीतिक पक्ष रहते हैं जिनको हॉलमार्क नहीं होना वही अच्छा है, ये उसका ओपिनियन बन गया है। तो ये सरकार को डर है गिरने का और गिरने का डर जब तक सरकार को है तब तक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो फुल मेजोरिटी की सरकार होती है ना वो बहुत खतरनाक है। और जब भी भारत में चुनाव होता है और रिजल्ट आते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला मुझे बहुत खुशी होती है, बुढ़ाया का पता नहीं चलता मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला माने की सरकार को कभी भी गिराया जाता किसी भी मुद्दे से सुनाया जाता और ऐसा हमने कई बार करते हैं, इसलिए सरकार कमजोर है जिसमें ज्यादा बल नहीं है लेकिन वो मुझे बुला नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने दो कैसेट बनाए, दो घंटे एक एक घंटे की दो कैसेट, वो कैसेट यहां भी है आप लेके जाओ और उसकी कॉपी बनाओ 1000, 2000, 5000 मेरा कौन कॉपी आएगी मैंने आपसे कहा सबको कॉपी करने का आएगा, उसकी कैसेट कॉपी कॉपी करके आप अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दो, ग्राहकों के साथ आपके दूसरे व्यापारियों को देना शुरू कर दो, शादी के तरफ और व्यापारियों को दे दो, मेरठ के तरफ और व्यापारियों को दे दो, कम से कम इतना करो कि 2-4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में वो फैल जाए, ये जब फैल जाएंगे तो फिर आप एक ऐसी तैयारी करो कि पूरे महाराष्ट्र का जो सराफा एसोसिएशन है उसकी एक सभा बुलाओ और उसमें ये नक्की करो तय करो कि कोई महाराष्ट्र का व्यापारी बहुमान नहीं देगा, पहले तय करो कोल्हापुर का नहीं होगा, फिर तय करो मेरठ का नहीं करेगा, जलगांव का नहीं करेगा, एक एक शहर का, फिर मिलकर सबसे महाराष्ट्र का, फिर थोड़ी आगे बढ़ कर उनके गुजरात का, तो सभी राज्यों से अगर ये होने लगा सरकार से कोई कम नहीं, वो तो 2 मिनट में कहेगी भाई तुम नहीं लेते तो छोड़ो हमारे ये डिपार्टमेंट नंबर है, जैसे शुरू शुरू में आईएसओ का चक्कर चला था नए के लोगों ने बहुत दे दिया, अब उनको जब खेल कदम में आया आपको ये दे रहा है तो आइए वाले भाई वाले देखते हैं काम काम पूछते हैं मुझे बहुत कहते हैं, तब भी मैंने सबको ये समझाया था कि ये लोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है, जो देने वाले हैं उनको धंधा करने के लिए बैठे आप समझ में आया है, तो ये जो हम वहां धोखा खा चुके हैं उसका यहां पर उपयोग करें तो शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल बस एक ही जगह है आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए, आपके आपस के संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए, हमने सामूहिक रूप से संकल्प किया वो सबको दिखा है। और दूसरी एक मैं गौर कर दूं कि मैं तो आया आपको जो समझा के गया बहुत लोग आएंगे आपके बीच और हमारे देने वाले भी आएंगे और ये बड़े बड़े धंधे में लगे हुए लोग भी आएंगे, वो आपको समझाएंगे तो आप अपनी आत्मा की कोई करोड़पति आकर आपके सामने बात कर रहा है तो वो बहुत सच होगी। ये मैं आप क्या आत्मा क्या कह रहे हैं, अंदर आत्मा क्या कह रहे हैं, मेरी अंदर आत्मा ये कहती है कि हजारों साल की परंपरा से जो विश्वास बना है आपका तो जहां था, अगर और हमारे इसमें घुसा तो ये चिंता है कि सबसे बड़ा और मैं 20,000 रुपए का ले लेंगे, 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसके लेने ही जो विश्वास होते का मैंने बताया, ग्राहक कहेगा अच्छा अभी तक आपने बिना और मार्ग का दिया इसका मतलब बढ़िया था, अब और मार्ग वाला ज्यादा अच्छा है, जबकि ये ज्यादा जमीन जितना हो सकती है वो आपकी जानकारी जमीन रखता हूं, तो ये विश्वास का तो सब निकल जाएगा, हमें वो विश्वास बता जाएगा। ये मेरी आपसे विनती और यही मेरी आपसे गुजारिश है, साधना है कि आप इस संदेश को तेजी से जितना फैला सकें फैलाइए। मैंने सबसे पहली सभा इस विषय पर नागपुर में की थी, आज मुझे खुशी है कि नागपुर से होकर जलगांव में हुई, जलगांव के बाद उसमें उदाहरण हुई, तब को सांगली में हुई, औरंगाबाद में हुई, धीरे धीरे सब महाराष्ट्र में संदेशा पहुंचेगा, बाद में गुजरात में और दूसरे राज्यों में, और साल भर में हमें एक माहौल पूरे देश में बना देगी कि बहुत सारे ज्यादा ज्यादा की खड़े होकर कहते हैं हमें नहीं चाहिए, और सरकार को हमें इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की अगर सहयोग नहीं है सरकार कुछ नहीं। और ये बात महात्मा गांधी हमको सिखा कर रहे हैं कि जब सरकार बहुत अत्याचार करने लगे तो आवाज करो और बहिष्कार करो, दो मिनट में सरेंडर कर देते, और गांधी जी ने 300,000 से अंग्रेजों को सरेंडर करा दिया, तो ये लोग खुशी नहीं है जो आगे सोचना पड़े, अंग्रेजों की ताकत को 50 देशों में राज चलता था, गांधी जी ने उनको भी सरेंडर करा, मनमोहन सिंह का राज 50 देशों में नहीं चलता है, भारत में भी ठीक से नहीं चल पाता है, तो ये तो दो तरह का सरेंडर करेंगे, इसमें कम नहीं है, आपकी एकता अगर बड़ी है, ग्राहकों का आपसे जुड़ाव है, तो ये बिल्कुल आसान है। और तीसरा आपकी काम ये करो, आज से आपके ग्राहकों को बोलो कि देखो भाई एक 50 पैसे का पुरस्कार दे दो, 50 पैसे का एक पुरस्कार दे दो, किसको, उपभोक्ता वर्गों के मंत्री, उसमें ग्राहक लेके आपको मिले, ग्राहक लेके कि हमसे बिना पूछे आपको एक हॉल मार्क कैसे लाए, ये तो ग्राहक की परमिशन से आने का सरकार को, सरकार तो मैंने जाए आगे तो हमें, हम वोट देते हैं, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, मालिक तो हमें, हमने तो नहीं कहा आपसे कि हॉल मार्क किया, किसी ग्राहक ने कहा, मैं ग्राहक हूं, मैंने आज तक नहीं कहा कि आप हमें हॉल मार्क चाहिए, मेरी आई ग्राहक है उसने आज तक नहीं कहा हॉल मार्क चाहिए, हमारे देश के करोड़ों ग्राहक हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा, मुझे याद नहीं है कि कभी किसी गांव में रहती हुई हो मुंबई में दिल्ली में ग्राहकों की तरफ से कि हॉल मार्क होना ही चाहिए, ऐसा हमने तो नहीं कहा, कुछ उपभोक्ता संगठनों ने जरूर कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी मैंने उनसे पूछा, तो कहते हम तो चलाते हैं विदेशी पैसे से अपना संगठन है, तो वहां से जब इंस्पेक्शन आता हम भी पूछते हैं, हमको आई नहीं है, एक उपभोक्ता संगठन को मैंने पूछा तुमने कैलोमीटर देखा है, तुमको मालूम है वो सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर यह काम करता है, जिंदगी में कभी कैलोमीटर नहीं देखा लेकिन अभियान चला दिया कैलोमीटर लगाओ कैलोमीटर लगाओ, मैंने कहा भाई कैलोमीटर में ज्यादा रेटिंग होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब खराब हो जाए तो उसका कुछ बता के चालू कर दे, आदमी का दिमाग जब भी खराब नहीं होता मशीन का नहीं होता, एक छोटे से हिस्से को ही चेक कर सकता है, वो शायद 0.5% का हिस्सा भी नहीं होता क्योंकि उसकी जो बीम है वो ज्यादा से जा नहीं सकती है, बीम तो सेंट्रलाइज होती है एकदम छोटे से हिस्से पर होती है, तो सपोज करो कि जिस हिस्से पर बीम डाली वो खड़ा है बाकी छोटा है कोई पता ही नहीं कर सकता, और आप कहोगे ये कह रहे तो बीम से चेक कराया इसमें सबसे ज्यादा घोटा है, तो आप अपने ग्राहकों को अगर ये समझाना शुरू कर दें तो उनकी समझ में बहुत आसानी से आ जाए, और मैं आपसे कहता हूं कि हाथ से छूकर और आंख से देखकर जितना अच्छा परीक्षण होता है वो कोई मशीन नहीं कर सकता, हाथ से छूकर और आंख से देखकर, क्योंकि ईश्वर ने हमको जो पंचेंद्रियां दी है उनमें से स्पर्श और दृश्य सबसे प्रभावकारी है, तो हमको हाथ से छूकर आंख से देखकर बता सकते हैं कि ये सोना कितना खराब कितना होता है, मशीन को कभी मिलता नहीं बता, दिल्ली में अभी एक दुकान में गया था, बहुत बड़ी दुकान है, कौन सा जिनका रोज में जाया आता था, अच्छी कौन सा ज्वेलर्स है, दिल्ली ज्वेलर्स, इनकी दुकान पर मैं गया था। संयोग से कह रहे थे खराब हो गया, संयोग से खराब हो गया, कुछ का कुछ भी आ रहा, मेरे का भाई इसको फेल हो रहा, नहीं तो आपका भी दिमाग खराब होगा, ग्राहक का भी खराब, क्योंकि ये जो रीडिंग दे रहा है वो वास्तविक नहीं है, और इसके खराब होने के चांस इतने ज्यादा है, थोड़ा बारिश जाती है और ह्यूमिडिटी बड़ी मौसम तो उसी समय पे खराब होता है, ह्यूमिडिटी मान समझते मौसम में थोड़ा नमी बढ़ गई, नमी ये केवल मिलकर यूरोप में आ रहा, अमेरिका में आ रहा, क्योंकि यहां के मौसम में नमी नहीं है, सूखा ही सूखा, जहां नमी बहुत है मौसम में बाढ़ में खराब हो जाता है, बारिश से चार महीने में तो ये बिल्कुल सही बात कहेगा, भरोसा नहीं, और कह रहे हैं कि बनाने वाली कंपनियां खुद कहती है कि हमारी लिमिटेशन, हर मशीन की एक लिमिटेशन होती है, उनकी अपनी लिमिटेशन है, वो एक पॉइंट को चेक कर सकता है, पूरे दाखिले को कमी चेक, तो ये ग्राहक को अगर आपने बता दिया कि भैया ये तो इतना बड़ा दाखिला है, इसके एक ही पॉइंट को ये चेक कर रहा है, जरूरी नहीं है कि पूरा दाखिला वैसा ही हो, इससे अच्छा एक बात को भरोसा करो तो मन चाहिए, क्योंकि अब तक तो बिना डेढ़ सौ मीटर के ही खरीदता आया है, ये तो सरकार ने खास रूप का लगा दिया हमारे पीछे कि डेढ़ सौ मीटर का उससे स्टैंडर्ड बढ़ता है, ये नहीं जाओ स्टैंडर्ड उससे नहीं बढ़ता है, चीपिंग बढ़ती है, और यूरोप में बहुत चीपिंग इसी डेढ़ सौ मीटर से होती है, और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चीपिंग इसी से होती है, आपस में कोई भी मतभेद ना हो जाए, मतभेद हो जाए तो उसको समझाने समझाने की कोशिश, मतभेद ना हो और कोई चुपचाप जाकर और मार्ग न लेके आया, आपको ले आया तो उसको सामाजिक बहिष्कार करके तुरंत बता दो दूसरे का भी नहीं होगा, और तीसरा ग्राहक को थोड़ा समझाना शुरू कर दो, और बाकी काम ऊपर के स्तर पर जब केस करने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, पार्लियामेंट में बिल को रुकवाने का, खासदारों को माइटी देने का, वो सब हम और हमारी संस्था करने ही वाले हैं, और हमने तो ये संकल्प पहले से लिया हुआ है, हमारी तो लड़ाई हर विदेशी कंपनी के खिलाफ है, चाहे वो हॉलमार्क एशिया है या हमको चाहते हैं भारत में कोई विदेशी कंपनी कदम रखे किसी को, तो हमको अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप नीचे से हम ऊपर से दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग की मदद कर रहे हैं, तो जरूर इससे हम सफल हो जाएंगे, असफल होने की कोई बात नहीं है, पर ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जब हमने सरकार को झुकाया है, सरेंडर कराया है, अभी गोरक्षा के प्रमाण पत्र में आपको बताता हूं, 58 साल से सरकार गाय की हत्या करा रही है, सरकार 58 साल आजादी जब से दी, उसके पहले अंग्रेज सरकार गाय की हत्या करती, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने कतल खाने भारत में चलते हैं उन कतल खानों में सबना पैसा सरकार करता है, कैसे लगाते हैं, कोई व्यक्ति कतल खाने खोलना चाहे सरकार उसको कॉन्क्रीट सब्सिडी देती है, 100 हजार सब्सिडी, अगर आप कोलापुर में कतल खाना खोले तो जितने रुपए का कतल खाना बनेगा उतना उतना रुपया सरकार आपको देगी, आपका कतल खाना खोलना शुरू होगा, और आप कोलापुर में गौशाला खोलो तो सरकार इतनी हराम हो रही है, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, गाय पालने के लिए नहीं गाय काटने के लिए पैसा, 58 साल से यही चल रहा है, ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही, पिछले 7 साल से केस चालू था, 3 संस्थाओं की तरफ से हमने केस किया था कि सरकार करवा रही है गाय का कसाई, कसाई को कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही है सब्सिडी, तो सरकार की सब्सिडी के प्रश्न पर जब केस खुला और उनके सारे कार्य हमने ध्वस्त किए, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत में एक भी गाय नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी तो सरकार की जमा करें, अब सरकार दौड़ता ही नहीं, क्योंकि इस जजमेंट को कानून बना के लागू करने में उनको तकलीफ आ गई, तकलीफ क्या आ रही है, बहुत सारी है जिन्होंने 2000 से पैसा बनाया है और बना रहे हैं, मीट एक्सपोर्ट करके पैसा बना रहे हैं, जैसे बहुत सारी है, उनके कतल खाने चल रहे हैं, अब उनका धंधा बंद होने का डर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर कानून नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, हर राज्य में, तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम तो दिल्ली से बनाएंगे, राष्ट्रपति का सही कराएंगे, कर्नाटक में भी होगा, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप में ईमानदारी है, संकल्प है, सच्चाई के साथ है, तो कोई भी सरकार आपके सामने नहीं है। 58 साल में तो गाय की हत्या कर रही थी सरकार, जिसमें लगी हुई थी आपको बंद हो जाएगी थोड़े दिनों में। गाय है, गाय का कोई प्राणी अगर कटा तो पुलिस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री किसी की ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गाय गुजर गई उसके ऑफिसर की जिम्मेदारी में जाना। तो ये हुआ है, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं, कभी भी आप निराश मत करिए, कभी भी ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। आप ईमानदारी से संकल्प के साथ एकता बनाकर चलते चले जाइए, हर काम होगा। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करने आया कि आप अपने बीच में पहले एकजुट बनिए, संकल्प ले लीजिए कि हम जब तक सब मिलकर तैयार करेंगे कोई हॉल मार्ग नहीं देगा। और ये माहिती धीरे धीरे दूसरे गांव में फैलाना शुरू कर दे। मैंने इसके लिए जो पैसे बनाए हैं वो आप ले जाइए, मेरे स्वास्थ्य में हैं, उनको बांटिए, कॉपी करिए, हजारों की संख्या में लोगों को दीजिए। और वो एक पत्रक चाहिए जो आपसे कहा बनाने के लिए, वो पत्रक हमने बनाया हमारे सुनने का है, आप उसे बना लीजिए, पूरा ऑफिस में पड़ा हुआ है, संजय प्रदेश को फोन करके वो तो भेज देंगे और आप फिर उसकी री कॉपी करेंगे, रीप्रिंट करिए, हजारों लाखों की संख्या में आती है और बांटना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन में ग्राहकों को जब समझ आ जाए तो ग्राहकों की एक सफा बुलाइए, फिर उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आप व्यापारी और ग्राहक एकजुट हो गए तो फिर के द्वारा भी आगे बढ़ेंगे और शायद हम उसमें जीत पाएंगे। ये मेरा आपको व्यक्तिगत निवेदन है। और एक छोटी सी चलते चलते बात करके आपके कोई प्रश्नों को जरूर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करें तो उसके लिए एक छोटा काम और करें कि आपका मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे। ये बहुत आवश्यक है। कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे, क्योंकि बुद्धि से मदद मिलती है सोचने में, मन संकल्प कराता है और शरीर उसको बनाता है। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है, चर किसी की कमी नहीं, कोई भी बड़ा काम करने के लिए देखो तो पहले स्वयं स्वस्थ बनो, तब वो काम आसान है। नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंटल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम और वो करने वाले बैठे हुए, और इस मेंटल टॉर्चर में कोई टूट जाता है तो वहीं से काम खराब होते हैं। तो आप मेंटली साउंड रहे, मानसिक रूप से आप में शक्ति रहे और शरीर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहे, इसके लिए मेरे लिए छोटी सी बात है जो आप उनका अध्यक्ष को पहुंच सकते। आप अपने रोटी को थोड़ा व्यवस्थित करिए, खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करिए ताकि बड़ा काम करने की शक्ति आपको मिले। थोड़े दिन में क्या होगा कि जब आप अपनी ताकत के घर जाएंगे तो बरसात वाले नहीं बैठेंगे, कंपनी में वहां करोड़ों रुपये भर रहे हैं, जो दुभाषियों को रिश्वत देते हैं, गंज देते सूचना देने वाले, वो समय आपको और ज्यादा मानसिक शक्ति की जरूरत होगी। तो आप अभी से थोड़ा अपने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें तो ये आपके आ जाएगा। शरीर बहुत सुरक्षित रहे, रेजिस्टेंस वाला रहे और मन में शक्ति बहुत रहे, संकट करे। इसके लिए चार उपाय हैं। सबसे पहला कि आप भोजन के बाद पानी पीना बंद करें, एक घंटे के बाद पानी भोजन के बाद कुछ पीना पड़े तो ताक पियो, दूध पियो, जूस पियो, पानी एक ताक के बाद, क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब आता है जब आपका खाया हुआ भोजन पूरा पच जाता है। जो कुछ खाया है उसका पाचन होना बहुत आवश्यक है और पाचन होने के लिए एक सवा घंटे का समय लगता है। और भोजन के पाचन होने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है वो पानी है, क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए पेट में गर्मी लगती है जिसको जटरा भी कहते हैं, और पानी अगर पिया तो अग्नि शांत होती है तो फिर पचता नहीं। तो आयुर्वेद का सर्व सूत्र है कि शरीर को तंदुरुस्त रखना और मन को ऊर्जावान बनाना, तो इसके लिए भोजन के बाद पानी नहीं पीना एक साल के बाद। ये नियम आप धारण करो तो आपकी 50% बीमारियां तो दूर हो जाएंगी, मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ। दूसरा एक नियम है कि पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना, हमेशा कोमल ठंडा रुकना, कभी भी पीना तो कोमल ठंडा रुकना, जितना गर्म चाहिए उतना गर्म पानी, ठंडा कभी भी पीना रजिस्टर बहुत कम होता है ठंडा पानी। और ठंडा पानी पीने से दूसरी सबसे बड़ी अच्छी होती है कब्जियत, वो उसको बंद करता सीख रहे और उसमें से दूसरी बहुत सारी बीमारियां चल रही, तो ठंडा पानी पकड़ना चाहिए, हल्का सुपर गर्म पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी, तीसरा नियम पानी कभी भी एक साथ नहीं देना, थोड़ा थोड़ा सिर्फ करके पीना, बहुत दूर कर देता है, एक बार में एक से पीना, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा, एक ग्लास पानी तीसरा 15 मिनट लगाना, एक साथ 1 मिनट में नहीं, रजिस्टर सबसे कम इसी से होता है, लगातार लगातार पानी, तो पानी मजबूत पीना, हल्का कोमल पीना, भोजन के बाद में पीना, और सवेरे उठे सबसे पहले पानी, तो ये चार वर्ग का पालन आप करेंगे तो बाद में फिर आप तीनों आपके संतुलित रहेंगे, और इस तीन के संतुलन से ही रेजिस्टेंस आता है, प्रतिकारक शक्ति आती है, और मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ एक लय रहता है, आप यह नैतिक गाना तो रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ता है, नैतिक गाना छोटा छोटा दूसरे करना होता है, उसको रात को पानी बनाना है, सवेरे उस पानी को पी, तो ये नैतिक गाने से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है, और खून को बराबर साफ करती रहती है, अगर आपका खून स्वच्छ है, पवित्र है, संतुलित है, तो कोई बीमारी नहीं करता, और थोड़ी शरीर में कहीं थोड़ी कमजोरी होगी तो ये नैतिक गाना बिल्कुल ठीक रहेगा, जैसे डायबिटीज है, तो सबसे कमजोर शरीर डायबिटीज आदमी का होता है, मन भी कमजोर होता है, शरीर भी कमजोर होता है, आप में से किसी को भी डायबिटीज है तो हाथ से पानी में डालो, सबसे पानी, और इस नैतिक गाने से घोटे का दर्द जाएगा, कमर का दर्द जाएगा, डायबिटीज चली जाएगी, मन बुद्धि शरीर तीनों तंदुरुस्त बनेंगे, और अंत में ये नैतिक गाना आपको वज्र जैसा बना देगा, शरीर एकदम इतना कठोर हो जाएगा कि आसानी से कोई दूसरी बीमारी नहीं आ सकती, ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे स्वयं का घर में दालचीनी, दालचीनी का पाउडर शहद के साथ या गर्म पानी के साथ देंगे तो भी शरीर से आसानी से रोक जाएंगे, शरीर दुरुस्त होगा, हमारे घर में ऐसी एक बहुत अच्छी औषधि है हल्दी, स्वयं का घर हल्दी नियमित रूप से आप प्रयोग करो, थोड़ा दूध में डालकर लेते रहो, बहुत सारी बीमारियां कमी आएंगी, और ऐसे ही हमारे स्वयं का घर में बहुत अच्छी औषधि है जीरा, पेट की कोई तकलीफ होगा जीरे का पानी लेंगे, हमारे संपर्क घर में 148 औषधि है, उन पर बराबर नजर रखो, कभी भी तकलीफ हो जाए तो उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि डॉक्टर के यहां से आपको दवा आपको ये सब रेजिस्टेंस को कम करने वाली है, एलोपैथी में एक भी औषधि नहीं है, वो एलोपैथी वाले को कहते हैं हमारे पास जहर है, वो खुद है, और आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी में ढूंढते रहे, एलोपैथी कभी भी संपूर्ण स्वस्थ नहीं रहते, संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में ही संभव, और आयुर्वेद का सबसे अच्छा हमारा रसोई घर में स्वच्छता घर में शेष है उसका आप भरपूर इस्तेमाल करो, और अंत में बन सके तो अगर शरीर को अच्छे से ताकतवर मन बुद्धि संकल्प के साथ चले वो मूत्र से थोड़ा भी चलो देशी गाय का मूत्र बहुत संतुलस्त बना सके, मैं 6 साल से हजारों लोगों को इसका प्रयोग किया, अद्भुत शक्ति आई गोविंद, मरे हुए देश की स्थिति में पड़े हुए पेशेंट चलना शुरू करके आठ बजे तो गोमूत्र कर सकते, तो 25-30 मिलीलीटर गोमूत्र सवेरे करके आप ले सकते हैं, अगर कोई बीमारी है तो जरूर लो, नहीं है तो भी ले, बीमारी कुछ भी हो नाम उसका कुछ भी हो वो सभी गोमूत्र से ठीक होने की कैपेसिटी रखते हैं, गोमूत्र में 17 औषधियां हैं और वो पूरे शरीर को दुरुस्त करने के लिए काफी है, तो ये थोड़ा आपको लेकिन सावधानी से कहती है कि जो गाय का दूध लेना वो देशी गाय है जैसे विदेशी है, क्योंकि विदेशी गाय का दूध कुछ काम कर रही है, दूध भी उसका काम कर रही है, दूध भी काम देशी गाय का ही दूध काम का है, विदेशी गाय का दूध लेंगे उल्टा परिणाम है, रोग जांच हो जाए, देशी गाय का भी काम रखी का किटारी थरपारकर साहिबाल कांकरेजी देवणी अमृत महल जो भी हमारे इलाके की गाँव में उसका ही आप बोलोगे कि देशी गाय कितनी है तो एक गौशाला से बता दो, सब लोग मिलकर एक छोटा सा पांच इकट्ठा करो, एक गौशाला बता दो, दूध भी मिलेगा और उसका शेड मिलेगा, तो शेड गरीबों को दे देगा, उनको भी लाभ हो जाएगा, यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय के शेड से ही अच्छी खेती होगी, तो समाज का भी भला कर सकती है और आप अपना भी भला सकता है, और दूध कभी भी पीना तो गाय का ही पीना भैंस का ही, क्योंकि भैंस का दूध पीने से आपकी शक्ति ही नहीं रहेगी, हमारे देश के लोगों ने 20-25 साल से भैंस का दूध पीना शुरू किया तो ये हाल है, जहां देखो वहां गिरावट 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 गिरावट। कारण इसका क्या है? सब कुछ तामसिक और वो तमस वाला शक्ति के सबकी बुद्धि भी कैसे हो, जैसी भैंस है वैसे भैंस जैसी बुद्धि सबकी हो। इसलिए आप गलती में बुद्धि और भैंस को देखो ना समझ में आ जाएगा, कहीं घड़ी हो जाए घटती नहीं अपने से डंडा पकड़ना पड़ता है जो हटती है, सामने से कट आ जाए पीछे से बस आ रहा हॉर्न की बजाय जो भी घटती है, क्योंकि अकल नहीं है उसको, बुद्धि नहीं है। भैंस कभी भी किसी और जाकर बैठेगी, गुस्से को निकल भी नहीं है और इतनी मूर्ख होती है कभी अपने बच्चे को पहचान भी नहीं है। एक भैंस का बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरे का पहले के साथ चला है और भैंस का बच्चा बच्चा उसको भूसा भर के खड़ा करते तो दूध दे देती है, भाई नहीं देती है भाई। तो ऐसी भैंस का मत क्यों बड़ा अल्लाह के पास जाए, अल्लाह के पास जाए, भैंस सिर्फ अल्लाह के पास ही है। सोचो तो मुझे बड़ा दुख होता है कि गुलाम को आता हूं भैंस ही भैंस दिखाई देती है, हम लोग भैंस का जो कुछ रहे तो इसलिए गुलाम की स्थिति थोड़ी बदल दो, आप थोड़ा गाय ज्यादा रखो, गाय का दूध पियो, तो ये आगे आपको शरीर के काम आएगा और भारत की आने वाली जनरेशन के भी काम आएगा। और मैं इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए अभी तैयार हूं, आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं जिसका उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश करूँ। अब ई मेल में काम करते हो कंप्यूट करते हो ई मेल एड्रेस कभी भी प्रश्न का ये विषय है हमेशा मैं आपके उत्तर के लिए तैयार करूँ। मेरा फोन नंबर है 9744811 9448 1 9448 1 1 4531। और इसमें सबसे आगे को मुझे जरूर लगता है क्योंकि मैं करना चाहता है से होंगे। तो ये दो फोन नंबर, एक और दूसरा फोन नंबर लिख लीजिए, वो मेरे ऑफिस का है बड़ा ऑफिस जो हमारा मुख्य कार्यालय है 0715251 2 एसपीडी कोड और फोन नंबर है 5603 5603 3। ये ऑफिस पता मेरा है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा, बस इतना ही राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा, सेवाग्राम गांव है वर्धा जिले में, पिन कोड 442 102 नीचे भारत। और अगर तुम ईमेल एड्रेस से लिखना हो तो ईमेल एड्रेस है राजीव दीक्षित RAJIV DIXIT ABA, ये एक ही शब्द है राजीव दीक्षित ABA
मेरा मन वाजा बजा पे है, वाजा बजा पे ध्यान देने आ रहे हैं। मेरे को लगता है उसमें एक फायदा है जो भी कि सोने वजह को मतलब उससे जुड़ी है। आज वाजा बजा में दाल है, दाल का भाव 25 रुपये से उठ कर आज खोटी का कुछ आपको मालूम नहीं, और अभी खोटी का कुछ खोटी का कुछ दाल है वो दाल क्षेत्रीय वर्ग बनाता है उसको इसकी आमदनी बढ़ती है, इससे क्षेत्रीय वर्ग की आमदनी बढ़ती है। आपने व्यासन में कहा खुद आपने कहा जो शेतकरी वर्ग है उससे आज थोड़ा थोड़ा व्यापार जुड़े थे, उनके घर में शादी है तो हमारा सीजन है या सब सब जानते हैं, तो अगर उनके पास पैसे तो हमारे पास भी पैसा आएगा, तो मैं इसका आपको स्मृति कर।
आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस वस्तु आमदनी से भाव बढ़ता है और शेतकर की आमदनी उससे बढ़ती होगी तो महाराष्ट्र में कोई शेतकरी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में 70 लाख शेतकरी काफी उत्पन्न कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शेतकरी कापूस के लिए मारा है। फिर दूसरा है 45 लाख शेतकरी ऊस उत्पन्न कर, लगभग 47 लाख शेतकरी हैं जो ज्वारी बाजरी गेहूं उत्पन्न कर रहे हैं और मुश्किल से 5 या 7 लाख शेतकरी हैं जो तुरंत की दाल उड़द की दाल कुछ की दाल है। तो ये महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा शेतकरी है कापूस से, कापूस फायदा बाजार पर है आपको मालूम है, खेती उत्पन्न में सबसे पहले कापूस ही आएगा, आज स्थिति ये है कि 5 साल पहले आप उसको 3600 रुपये क्विंटल भाव था, अभी वो 1700 रुपये क्विंटल है। तो ये वायदा बाजार आसमान पर चढ़ा के जमीन पर जब गिराता है ना तो अंतना आत्महत्या करेगा। क्षेत्रीय समाज ने क्या क्या मैं बता रहा, जब वायदा बाजार शुरू हुआ ना 5-6 साल पहले, सबसे पहले आपको सारा परिवार हुआ 2600 रुपए 2700 रुपए क्विंटल भाव मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्षेत्रीय वर्ग को क्या लगा कि कानून बहुत जास्ती करो भाव हो रहा है ना, मतलब कानून ही कानून 70 लाख क्षेत्र का कुछ बाकी सब क्षेत्रीय छोड़कर कानून से लगा। अंत में क्या हुआ, वायदा बाजार में जो खिलाड़ी है ना वो भी कुछ दिमाग रखते, उन्होंने 11-70 लाख क्षेत्रीय को कानून से लगा के आराम से उस बाजार को क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है सरकार की, तो जो 2600 रुपये क्विंटल का 1700 रुपये क्विंटल हुआ। अब स्थिति यह है कि जो क्षेत्र ने बाकी सब बंद कर दिया कानून आधारित खेती, उसको फिर थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा अच्छा अभी तुम ऐसा करो बीटी कॉटन करो, तो बीटी कॉटन लगा दिया 50 रुपये का पहले बीज आता था, अब 1800 रुपये का आ गया। अब बीटी कॉटन करो तो ये खत लगाओ ये खत लगाओ, परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रकारी को 1 हेक्टेयर खेती में 12,000 रुपये का खर्चा हो गया और 1 एकड़ खेती में जो कापूस उत्पन्न होकर बाजार में मिलता है वो 8,000, 7,000, 9,000 का मिलता है, 12,000 खर्चा है। अब वो 3,000 का जो घाटा हो तो पूर्ति करने के लिए कर्ज लेता है और कर्ज का ब्याज भरता है फिर कर्ज लेता है और जब देने की तारीख में होती बात तब कल्पना की बात है, लाभ होता है एजेंट
मेरे आपसे एक निवेदन है, आपने हनुमान के विरोध में एकजुट सब होना चाहिए ऐसे बोला। अच्छा ये हनुमान है इसके अंदर समझो हमारे पहले अपन अपने सभासद वो भी ये बारे में कभी सोचना चाहिए, हम लोग गहने के ऊपर 23 कैरेट से हम मानते हैं और एक्चुअली दागिना वो 20 कैरेट का हो 75% है 78% है 80% है। अच्छा गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो उसका सर्वे कर, कल उदाहरण का कुछ दिन इसी तरह की दुकान में जा रहे उधर से दागिना लिया 23 कैरेट का सैम देखा मगर एक्चुअली दागिना वो 20 कैरेट का निकला। अच्छा उसकी गुड़गिल खराब हो जाएगी जब अपन उनके साथ ऐसा बताओ करेंगे हम नहीं करना चाह रहे हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे तभी वो कोई ना कोई तो कदम उठाएगी जिसकी वजह से अपने शराब को भी उसका त्रास हो सकता है। तभी समझो कि वो 75 टच का दागिना है और वो सब पेपर में आ गया और उसकी गुंडी जो विश्वास जो हम बोल रहे हो जिस विश्वास से अपन काम करते हैं वो विश्वास उस टाइम 100 वर्ष का विश्वास 1 मिनट में टूट जाएगा, तभी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा।
ये बहुत
बेहतर
चीज है, अपनी सच्चाई आप मत छोड़ो क्योंकि ये जो है ना धर्म युद्ध है, आपकी सच्चाई आपकी ताकत है, आपका ग्राहक आपकी ताकत है, आपकी सच्चाई में आप अगर कमजोर पड़े तो लड़ाई आप साथ में ये आप समझ सच्चाई आपके मन को घुमाए जितने कैरेट का दागिना है उतने ही कैरेट का बोल होते आप ईमानदार ऐसे हो तो मेरा दागिना 20 कैरेट का है 18 कैरेट का है 22 कैरेट का है 23 कैरेट का ईमानदार ऐसे हो उसमें ये नहीं कि 20 कैरेट का बाकी 17 कैरेट का है 19 पता क्योंकि ये बात सही है ऐसा थोड़े दिन में होगा जब 2008 की कंपल्सरी करेंगे ना ऑलमार्क तो वो एड्रेंटल सर्वे करेंगे या एडमेंटल आपके यहाँ आकर चेक करेंगे और वो यही होगा किसी भी दुकान में थोड़ा भी कमजोर दागिना मिला उस पर क्लेम कुछ किया गया है वास्तविकता कुछ भी थी तो उसको आधार मिलेगा आपको पहले दे देगा और वो फिर पूरे सराफा बाजार को बिल्कुल जैसा वैसे ही करेंगे। एक व्यक्ति की कमजोरी पूरे समाज को तस्वीर देगी तो आपको मैंने ये बात कही है कि जैसे आपने संघर्ष करो हम बहुत मानी नहीं देंगे वैसे आपस में मिलेगा आप संघर्ष करो कि आप समाज की सच्चाई नहीं कोई मजबूत नहीं। इसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि बहुत मारे क्वालिटी की कोई गारंटी ना हो तो इसमें कम क्वालिटी के कार्यक्रम में भी बहुत मानी मिलता है और अच्छी क्वालिटी में भी मिलता है।
अगर गवर्नमेंट गारंटी पर फिटनेस होता उसमें उर्वरक दे सिर्फ 90% तो बात 50% 70% बिहार का भरोसा है कि प्योरिफाइड का मामला निकल रहा हो, कि एक फाइड का निकल रहा हो, क्या तांबे का निकल रहा हो, वास्तव में नहीं है। कितने रुपया जो भरोसा है उसका नहीं होना चाहिए। अगर प्रत्येक मामले में प्योरिफाइड का मामला निकल गया हो, ये शेयर का निर्माण बनाया गया, इसका क्या निकलेगा, तो उसका अच्छा निकालेगा, उसका अच्छे करने वाला है।
तर त्यांना आपण ज्यावेळी हे आपल्याला सांगतात, आपण व्याख्यान आणले म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला आणतोय, त्यांचं मार्गदर्शन आपण घेत असताना आपल्याला कुठेही अयोग्य म्हणजे त्याचं मी सध्या म्हणून आपण कुठं चुकून नाही म्हणून मी त्याला विचारलं, आम्ही आंदोलन करा म्हणून सांगितलं त्याला, आणि उद्या आपला माल असा आहे की उद्या कुठेतरी आपण प्रॉब्लेम लागलो तर कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचं नाव त्यात असं कुठेही बोललं जातं, तुला कुठे काय म्हटलं नाही, मी जो प्रश्न विचारायला
क्वालिटी मार्क रजिस्ट्रेशन सामने काम करेंगे, उसमें एक्साइज का प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तिगत